अगले कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न: केदारनाथ अग्रवाल का जीवन परिचय देते हुए उनके काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या केदारनाथ अग्रवाल के जीवन धारा पर प्रकाश डालिए तथा उनके काव्य में यथार्थवाद और प्रकृतिवाद का सामंजस्य मिलता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर: हिंदी साहित्य के नवीनतम काव्यधारा के मूर्धन्य रचनाकारों में श्री केदारनाथ अग्रवाल जी का नाम निसंदेह रूप से अग्रणी है। वे आत्मकवि हैं, स्वांत सुखाय रचनाकार हैं, वे आत्मद्रष्टा हैं, वे युग सृष्टा हैं, वे जनहितवादी हैं, वे स्वयं लिखते हैं। हम लेखक हैं, कलाकार हैं, हम जीवन के भाष्यकार हैं, हम कवि हैं जनवादी, हम सृष्टा हैं श्रम शासन के, हम मंगल के उत्पादन के, हम दृष्टा हैं हितवादी। आत्मकवि श्री केदारनाथ जी का जन्म मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 1919 में हुआ था। इन्होंने साहित्य को जीवन का सुख आधार बनाया। इन्होंने कविता को जीविका साधन नहीं बनाया, अपितु कविता इनकी आत्मा थी, कविता इनका धर्म था, कविता इनकी चेतन मन की अभिव्यक्ति थी, कविता इनकी जीवन रसधार थी। इन्होंने कविता की साधना मानव मात्र के हित के लिए किया। श्री अग्रवाल जी तार सप्तक के माध्यम से काव्य क्रांति का बीजारोपण किया, जो देखने में सीधी सीधी सरल स्वच्छंद अत्यंत लघु होती हैं, किंतु अध्ययन तथा मनन के पश्चात उसमें से जिस दिव्य ज्योति का प्रस्फुटन होता है, वह समस्त मन मस्तिष्क एवं आत्मा की तंत्रिकाओं को झंकृत कर देती है। जैसा कि प्रसिद्ध समालोचक डॉक्टर रामनिवास शर्मा स्वयं लिखते हैं, इनकी कविता देखने में बहुत आसान लगती है, आकार में प्रायः छोटी होती है, इसलिए उनकी सरलता भुलावे में बल देती है। कई बार पढ़ने, ठहर कर विचार करने, कवि की मनोदशा में डूबने से उनकी गहराई का अंदाज होता है। अग्रवाल जी ने कई काव्यों की रचना की, जिसमें युग की गंगा, नदी के बादल, लोक तथा आलोक, फूल नहीं रंग बदल बोलते हैं आदि मुख्य है। काव्य की विशेषताएं या काव्य सौष्ठ: यथार्थवाद। नवीनतम काव्यधारा की नई कविता के प्रणेताओं, नियंता एवं नियामकों में श्री अग्रवाल जी की क्रांति मूलतः जनवादी है। वे प्रयोगवाद, प्रगतिवाद के विद्रोही कवि थे। उनमें यथार्थवाद की अग्नि समाई हुई थी। वे विषय वस्तु और सर्वप्रथम पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्षीकरण करते हैं। वह प्रत्यक्षीकरण के पश्चात वे गहन अध्ययन एवं मनन करते थे, तत्पश्चात आत्मविवेचन करते, अंततः उसे प्रकट करते थे। जैसा कि उनके यथार्थवाद का स्वरूप प्रस्तुत है: मैं उसको जब जब देखा, लोहा जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। यहाँ क्रांति के स्वर प्रस्फुटित हुए हैं। परिवर्तन की परिपक्वता नवनिर्माण के लिए तत्पर है। अग्रवाल जी का कोमल मन, सरल स्वभाव पर दुखकारता, जनहित की भावना, मानव मात्र का सम्यक सदिश विकास हेतु प्रतिपल प्रतिक्षण समर्पित रहता है। वे दीन हीन, निर्धन, गरीब, बेबस, मजदूर, मजलूम, किसान, कामगार के शोषण दोहन के विरुद्ध क्रांति के स्वर उद्बोधित कर समाज से असत्य, अधर्म, अन्याय, अत्याचार, अनाचार, आतंक को सदा के लिए मिटाना चाहते हैं। अग्रवाल जी का यथार्थवाद प्रत्यक्षवाद का नियामक है। उन्होंने भारत के निरीह किसानों का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। उदाहरण द्रष्टव्य है: जब बाप मरा तब यह पाया, भूखे किसान के बेटे ने, घर का मलवा, टूटी खटिया, कुछ हाथ भूमि वह भी परती। बनिए के रुपये का कर्जा, जो नहीं चुकाए पर चुकता। बस यही नहीं, जो भूख मिली, सौ गुनी बाप से अधिक मिली। प्रयोगवाद प्रगतिवाद। श्री केदारनाथ अग्रवाल जी का प्रयोगवाद एवं प्रगतिवाद, विज्ञानवाद एवं आत्मवाद के गहन अध्ययन एवं मनन की प्रस्तुतिकरण है। जहाँ क्रांति के स्वर प्रस्फुटित होते हैं, उनके काव्यों में अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, बेईमानी, घूसखोरी, अनर्गलवाद आदि के साथ साथ रक्त शोषकों, धन पशुओं, पूंजीपतियों, सरमाएदारों के पशुतुल्य व्यवहारों के विरुद्ध जोरदार क्रांति की उद्घोषणा हुई है। वे धनपतियों को दीन हीन जर्जर जनता का मांस नोचने वाला युद्ध कहते हैं। वे समाज के समस्त शोषण, दोहन, चित्कार को पूंजीपतियों की देन मानते हैं। वे पूंजीवाद के क्रूर कृत्यों पर आक्रोश व्यक्त करते हुए लिखते हैं, सैकड़ों हजार गिद्ध व्योम के प्रसार में उभार, क्षुब्ध क्रुद्ध पंख मांस की पुकार मार, अंधार का अरार आर पार नोचते। अग्रवाल जी का प्रगतिवाद, मानवतावाद, विज्ञानवाद, विकासवाद, संरचनावाद, अनेकांतवाद पर मूल रूप से आधारित है। वे जियो और जीने दो के सिद्धांत को आत्मसात कर मानव मात्र के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना करते हैं। उनका विचार था कि विकास का मूल आधार है कठिन परिश्रम, सच्चा इरादा, सही लक्ष्य, निरंतर कर्म। इसके अतिरिक्त जब कुछ भ्रमित एवं भुलावा मात्र है, वे आत्मबल, आत्मज्ञान, आत्मकर्म में निष्ठा रखते हैं। वे लिखते हैं, कमर न टूटी नरम जीभ से, हमने दिग्गज पर्वत ठेले। जहाँ तक प्रयोगवाद का प्रश्न है, श्री अग्रवाल प्रयोगवादी हैं। वे प्रयोगवाद को प्रगतिवाद का कर्ता, धरता, हरता, भरता मानते हैं। बिना नव प्रयोग के नवीनतम प्रगति संभव नहीं। वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोगवाद के पोषक हैं। वे रूढ़वाद, संकीर्णतावाद, ढपोर संखवाद, बाह्य आडंबर, छल, भ्रमवाद आदि से परे रहकर सात्विक, सदिश, सम्यक, सर्वांगीण विकास के अनुपालन एवं सर्वसंचालक हैं। केदारनाथ अग्रवाल में प्रकृतिवाद। श्री केदारनाथ अग्रवाल जी का कवि हृदय प्रकृति के चर सौंदर्य के भ्रम जाल भ्रमित नहीं है। वे प्रकृति को शक्ति का स्रोत मानते हैं। वे प्रकृति और पुरुष दोनों को ही एक दूसरे का पूरक मानते हैं। प्रकृति शक्ति है और पुरुष उसका साधक एवं शोधक है। जहाँ विकास का प्रस्फुटन होता है, यही विश्व विकास की धुरी है। श्री अग्रवाल जी का प्रगतिवाद रीतिकालीन कवियों के भांति मात्र वाह्य सौंदर्य का दिग्दर्शन नहीं करता, अपितु वह शक्ति और तेज का भी नियंता और नियामक है। जैसे देखता हूँ स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में। अग्रवाल जी की प्रकृति सौंदर्य छायावादी कवियों से भिन्न होकर स्वांत सुखाय का प्रस्फुटन कराती हैं, जिसमें आत्मबल, आत्मबोध, आत्मशक्ति भरा पूरा है। जैसे हवा हूँ हवा, मैं बसंती हवा हूँ, वही, हाँ वही, जो सभी प्राणियों को पीला प्रेम आसव जिलाए हुए हूँ। यहाँ बसंत ऋतु का शीतल सुगंध समीर निज आत्मशक्ति को प्रस्तुत करती है। श्री केदारनाथ अग्रवाल जी मूल रूप से यथार्थवादी, विज्ञानवादी, नवीन धारा के कवि हैं। फलत उनकी भाषा सरल, सुबोध, मानव प्रकृति के अनुरूप, बोधगम्य, देवनागरी खड़ी हिंदी बोली है। भाषा में शब्दों का चयन आम जीवन की भाषा से चयनित किया गया है। जैसे पूरब से फेंका हथगोला, लाल अग्नि से जला अंधेरा, काल कठिन का। उपयुक्त कविता का अध्ययन करने के बाद यह सिद्ध होता है कि अग्रवाल जी का भाषा साधारण बोलचाल की भाषा है, किंतु भाषा की गहराई भावों से अनुप्रेरित होकर क्रांति के स्वर मुखरित करते हैं। भाषा में हिंदी शब्दों के तत्सम एवं तद्भव शब्दों का खुलकर प्रयोग किया गया है, जैसे पूरब, अगिन आदि। श्री अग्रवाल जी की भाषा में संस्कृत निष्ठ शब्दों के साथ शुद्ध हिंदी के शब्दों का प्रयोग मूल रूप से किया गया है, साथ ही सरलता, मधुरता, लयात्मकता का अभिव्यंजन प्रस्फुटित होता है। जैसे काल कठिन रूप सवारा, स्वर्ण वर्ण का, स्वर्ण वर्ण फैला उजियाला, विश्वभरण का। श्री अग्रवाल जी की शैली मूलतः मुक्तक छंदबंधित है, मधुरता लयात्मकता से आबद्ध है, साथ ही शैली में विवेचनात्मक, विचारात्मक, वैज्ञानिक एवं प्रयोगवादी है, जहाँ व्यंग्यात्मक पुट भी है। जैसे मांझी न बजाओ वंशी, मेरा मन डोलता, मेरा मन डोलता है जैसे जल डोलता। यहाँ कवि ने अपने आत्म अभिव्यंजना को प्रस्फुटित करने का प्रयत्न किया है। श्री अग्रवाल जी का छंद मुक्तक है, अलंकार की दृष्टि से अनुप्रास, उपमा, रूपक, रचनाओं में शांत, करुण, श्रृंगार, अद्भुत आदि रसों का निष्पादन हुआ है। काव्य में लक्षण, व्यंजना, माधुर्य तीनों का पुट प्राप्त होता है। परिणाम स्वरूप श्री केदारनाथ अग्रवाल जी काव्य कला की दृष्टि से आधुनिक हिंदी काव्य साहित्य के मूर्धन्य नियामकों में एक हैं। वे नई कविता के नेतृत्व करता हैं। उनकी कविता आत्मद्वार को उद्वेलित करती है, उसमें सरलता, मधुरता, लयात्मकता, व्यंजना, अभिव्यंजना एवं माधुर्य की पराकाष्ठा है। अग्रवाल जी की पहली कविता का शीर्षक है चंद्र गहना से लौटती बेर। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेढ़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिकना चना, बाधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सचकर खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह, तू हृदय का दान उसको और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी, भाग गाता मास फागुन आ गया है आज, वैसे देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग आंचल हिल रहा है इस विजन में। दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही उसमें लहरियाँ, नील तल में तो उगी हैं घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, आँख को है चमकाता, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते हैं मीन चंचल, ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है मेरे जल के हृदय पर, एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता, सुग्गे का स्वर टें टें टें। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिरंटो टिरंटो। मन का होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग जहां जुगल जोड़ी रहती रहे खेत में। सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। व्याख्या। आधुनिक हिंदी काव्य साहित्य में नई कविता के मूर्धन्य नियंता एवं नियामक तथा नेतृत्वकर्ताओं में श्री केदारनाथ अग्रवाल जी का नाम अग्रणी रहा है। प्रस्तुत कविता चंद्रगहना से लौटती बेर श्री अग्रवाल जी द्वारा रचित है, जिसके अंतर्गत कवि ने प्रकृति का सजीव एवं यथार्थवादी तथा प्रयोगवादी चित्रण प्रस्तुत किया है। बसंत ऋतु का मौसम है, रात्र की चांदनी समाप्त हो चुकी है। कवि खेत के मेड़ पर अकेला बैठा हुआ है। वह खेत में चने के फली को बड़े ध्यान से देख रहा है। उसी चने के खेत में बगल में अलसी पुष्प नीले रंग के रूप में लहरा रही है। वहीं पास में सरसों के पीले पुष्प देखने में अत्यंत ही सुंदर प्रतीत हो रहे थे। कवि को चने अलसी एवं सरसों के पुष्पों को देखकर मानो कोई स्वयंवर रचा गया हो की अनुभूति करता है। कवि का विचार है कि किस विजन स्थल में मानो स्वयं हरे पीले नीले सतरंगी चुनरिया धारण किए प्रकृति स्वयं स्वयंवर रचा रही है। कविवर अग्रवाल जी विजन स्थल को प्राकृतिक दृश्यों से ओतप्रोत हैं और वह स्थल जो नगर के औद्योगिक कोलाहल से दूर प्राकृतिक घटनाओं से भरा पूरा एक वही पोखरा है, जिसके किनारे हरियाली छाई है। पोखरा के जल में लहर उठ रही है। वह एक बड़ा शिला जो चांदनी सा चमक रहा था पोखरे में गड़ा हुआ, जो मानो वर्षों से प्यासा है और लगातार पानी पी रहा है। उसी पोखरा के किनारे एक बगुला ध्यान लगाए खड़ा है, जो मछली निगलने के ताक में है कि जैसे ही मछली उजले वह लपक ले। इसी बीच एक पक्षी जिसके पंख श्वेत हैं, उसने जल में चोंच मारकर एक मछली पकड़कर आकाश में उड़ गया। वहीं पास से ट्रेन की पटरी बनी हुई है, जो कुछ ऊंचाई पर बनी है, जिस पर ट्रेन के चलने का कोई निश्चित समय नहीं है। यह प्राकृतिक स्थल चित्रकूट क्षेत्र में है, जिसकी पहाड़ियाँ ऊंची हैं, चारों ओर कांटेदार एवं बांस के पेड़ छाए हैं। वहीं सुग्गा अपना राग अलाप रहे हैं, सारस पीछे अपने धुन में गा रहे हैं। सारस का जोड़ा जो श्वेत पोखरा आदि क्षेत्र में घूम घूम कर स्वच्छंद होकर नृत्य गीत में निमग्न है, जिसे कवि शांति से सुन रहा है। कविगत विशेषताएं। श्री केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखित कविता चंद्रगहना से लौटती बेर के अंतर्गत प्रकृति का यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत किया गया है। कवि स्वयं प्रत्यक्षदर्शी है। सर्वप्रथम वह अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रकृति के आनंद का सुखद अनुभूति करता है। चित्रकूट के पहाड़ियों के निकट बांस और कांटेदार वृक्षों के मध्य हरिताभ से भरे पूरे विशाल क्षेत्र, खेतों में उगे चने के मुर्रीदार फली, अलसी के पौधे तथा सरसों के फूल आदि बहुत ही सुंदर प्रतीत होती हैं। चारों ओर प्रकृति की अनुपम छटा बिखरी हुई है। पक्षी वृंद कलरव कर रहे हैं। सारस बक अपने दैनिक काम में निरत है। औद्योगिक कोलाहल से दूर सरल शांत स्निग्ध मनोहारी मनोरम वातायन का सुंदर दिग्दर्शन प्रस्तुत किया गया है। कला पक्ष की दृष्टि से काव्य चंद्रग्रहणा से लौटती बेर यथार्थवाद के साथ नवीनता का प्रस्तुतिकरण हुआ है। काव्य की भाषा सरल सुबोध आम जीवन की भाषा है। हिंदी खड़ी बोली के साथ साथ अंग्रेजी भाषा के दैनिक प्रयोग वाले शब्द भी प्रयोग किए गए हैं, जैसे रेल की पटरी गई है ट्रेन का टाइम नहीं, यहाँ रेल ट्रेन टाइम आदि अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। काव्य में यथार्थ की पुष्टि करने हेतु टें 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 टिरंटो टिरंटो आदि जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जो पक्षियों के बोलियों को प्रस्तुत करते हैं। कविता सामासिक पदों का भी प्रयोग हुआ है। काव्य की शैली शांत रस से भरा पूरा है, कहीं कहीं श्रृंगारिता का पुट है। शैली यथार्थवादी चित्रण के साथ वर्णनात्मक एवं व्याख्यात्मक तथा विवेचनात्मक है। तीनों ही शैलियों का मिश्रण यथार्थ को और भी अधिक सुदृढ़ता के साथ प्रस्तुत करता है। काव्य में अनुप्रास उपमा रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कविता में माधुर्य तथा व्यंजना युक्त है। काव्य में मुक्तक छंदों का प्रयोग हुआ है। अग्रवाल जी की अगली कविता का शीर्षक है मैंने उसको देखा। मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। व्याख्या। मैंने उसको देखा नामक कविता में अग्रवाल जी ने प्रयोगवाद एवं आधुनिक काव्यधारा का सुंदर सम्मिश्रण किया है। कविता मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है। यहाँ मनुष्य प्रतिपल प्रतिक्षण निरंतर तनमन से एकनिष्ठ होकर कर्म में निरत है। उसका शरीर लोहा जैसा बन चुका है। श्री अग्रवाल जी कहते हैं कि उन्होंने जब भी एक व्यक्ति विशेष को देखा जो निसंदेह श्रमिक है, वह व्यक्ति उन्हें लोहा सा प्रतीत हुआ। यह कारण है कि कवि जी कहते हैं कि उन्होंने जब भी उसे देखा वह लोहा जैसे प्रतीत होता है, वह लोहा सा कठोर है, उसमें कर्म करने की क्षमता है, साथ ही लोहे का जो गुण होता है उसने उसे भयंकर अग्नि ज्वाला में तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। कभी मनुष्य के उस रूप को देखा जो कर्म में विश्वास रखते हैं, कर्म से मुख नहीं मोड़ते, संपूर्ण जीवन लोहे सा संघर्ष करते हैं, तपते हैं, गलते हैं, ढलते हैं, किंतु उनमें एक विचित्र तीव्रता होती है, शक्ति होती है, वे गोली के समान चलते हैं, अर्थात जो भी कार्य उन्हें सौंपा जाता है तेजी के साथ पूरा करते हैं। कविता छोटी है किंतु पूर्णतः प्रयोगवादी प्रगतिवादी नवीन भावनाओं से ओतप्रोत है। एक ओर मार्क्सवाद का पुट है तो दूसरी ओर नवीन काव्यधारा का सुंदर उदाहरण है। भाव पक्ष में ओज है, व्यंजना लक्षणा और अव्यंजनात्मक झंकार है। भाव पक्ष में आत्मबल का भाव संपुट किया गया है। कला की दृष्टि से काव्य में मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार और उपमा का सुंदर प्रयोग हुआ है। कविता में वीर रस और करुण रस दोनों का विचित्र समागम हुआ है। कविता की भाषा सरल सुबोध हिंदी देवनागरी है। शैली व्याख्यात्मक एवं अभिव्यंजनात्मक है। काव्य का मूल संदेश उद्बोधन एवं उत्प्रेरण से युक्त है। इनकी अगली कविता का शीर्षक है माझी न बजाओ बंसी मेरा मन डोलता है। माझी न बजाओ बंसी मेरा मन डोलता, मेरा मन डोलता है जैसे जल डोलता, जल का जहाज जैसे पल पल डोलता। माझी न बजाओ बंसी मेरा प्रण टूटता, मेरा प्रण टूटता है जैसे तृण टूटता, मेरा प्रण टूटता है जैसे तृण टूटता, तृण का निवास जैसे बन बन टूटता। माझी न बजाओ बंसी मेरा तन झूमता, मेरा तन झूमता तेरा तन झूमता, मेरा तन तेरा तन एक बन झूमता। प्रस्तुत कविता माझी न बजाओ बंसी मेरा मन डोलता कविवर श्री केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित है। प्रस्तुत कविता छायावादी विचारधारा से प्रभावित होते हुए यथार्थ की ओर आकर्षित है। कवि ब्रह्मवाद में बंधना नहीं चाहता, अपितु वह अपने को जीवन में यथार्थ झंझावतों से संघर्ष करना चाहता है। वह पलायनवादी नहीं होना चाहता। यही कारण है कि वह माझी से कहता है कि वह उसे बंसी बजाकर भ्रमित न करे, क्योंकि उससे उसकी शक्ति छीण होता है, उसमें हलचल होता है, उसकी एकाग्रता टूटती है, वह अपने मूल धर्म से विचलित हो जाता है। कविवर श्री केदारनाथ अग्रवाल जी माझी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माझी, तुम वंशी का वादन बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे वंशी की मधुर संगीत उसके मन को व्यथित कर विचलित कर देती है, जिससे वह अपने विशेष लक्ष्य को भूलकर मात्र आनंद रस में विभोर हो जाता है। फलतः निर्माण और विकास दोनों ही अवरुद्ध हो जाता है। जब जब वंशी का वादन शुरू होता है, उनका मन नदी के जल के समान डोलने लगता है, उनका मन नृत्य करने लगता है जो उन्हें अस्थिर और व्यग्रता की ओर ले जाता है। उनका मन वैसे ही हिलने लगता है जिस प्रकार जल पर चलने वाले जहाज पल पल हिलता रहता है। कवि आगे कहता है कि हे माझी, वंशी वादन बंद करो, क्योंकि तुम्हारा यह वंशी वादन हमारे जीवन विकास के लिए घातक सिद्ध होता है, क्योंकि उसने जीवन में कुछ विशेष करने की प्रतिज्ञा ले रखी है और उसके वंशी वादन से उसका मन व्यथित होता है, जिससे उसका प्राण टूटता है। वह भी उस प्रकार जैसे कोई तृण पल भर में टूटकर बिखर जाता है। यह तृण जो वन में उगता है और कभी कभी तो समूचे वन ही टूट जाता है। अंततः वह माझी को इंगित करते हुए कहता है कि हे माझी, वंशी को न बजाओ, इससे उसकी शारीरिक शक्ति छीण होती है, उसका तन झूमता है, मन विचलित होता है, वह एकाग्रता को खो बैठता है, उसमें कर्म भाव के स्थान पर राग रंग का भाव भरने लगता है, अंततः वंशी वादन से मन डोलता है, प्रण टूटता है और मन झूमता है। फलतः वह अपने जीवन लक्ष्य को मात्र वंशी वादन के राग रंग में खो सकता है। अतः वह माझी से वंशी वादन को बंद करने का आग्रह करता है। काव्यगत विशेषताएं। कविता पूर्णतः प्रगतिवादी है, जो छायावादी भावना से अलग थलग है। कवि ब्रह्मवाद से दूर होकर यथार्थवादी जीवन व्यतीत करना चाहता है। वह जीवन से पलायन पसंद नहीं करता और न ही जीवन के अमूल समय को राग रंग में व्यर्थ नष्ट करना चाहता है। कवि की दृष्टि में जीवन एक प्रण है और इस प्रण की रक्षा के लिए तन और मन का सुदृढ़ होना आवश्यक है। वंशी के बजने से मन डोलता है, तन झूमता है, अतः जीवन धर्म निभाने में असफल होने लगता है। जीवन धर्म की रक्षा हेतु मन की एकाग्रता, तन की सुदृढ़ता एवं प्राण के प्रति पूर्ण आस्था आवश्यक है, तभी वास्तविक विजयश्री प्राप्त हो सकती है। कविता का कला पक्ष प्रभावशाली है। यद्यपि कविता मुक्तक छंद में लिखी गई है, किंतु काव्य में मधुरता एवं लयात्मकता विद्यमान है। उपमा और अनुप्रास अलंकार का सीधा प्रयोग हुआ है। काव्य में रूपक का प्रभाव है। कविता श्रृंगारिक होते हुए शांत भाव प्रस्तुत करती है, साथ ही करुण रस का संपुट है। काव्य में माधुर्य गुण प्रबल है। कविता की भाषा सरल सुबोध शुद्ध हिंदी खड़ी बोली है। कविता की शैली व्याख्यात्मक वर्णनात्मक एवं विवेचनात्मक है।